ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियाँ शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुने और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें।
ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।
सादत हसन मंटो को फसाना अल्लाह देता। दो भाई थे, अल्लाह रखा और अल्लाह देता। दोनों रियासत पटियाला के बाशिंदे थे। उनके अब्बा और अजदाद अलबत्ता लाहौर के थे, मगर इन दोनों भाइयों का दादा मुलाजमत की तलाश में पटियाला आया और वहीं का होके रहा। अल्लाह रखा और अल्लाह देता दोनों सरकारी मुलाजिम थे। एक चीफ सेक्रेटरी साहब बहादुर का अर्दली था, दूसरा कलेक्टर ऑफ स्टोरेज के दफ्तर का चपड़ासी। दोनों भाई एक साथ रहते थे ताकि खर्च कम हो। बड़ी अच्छी गुजर रही थी। एक सिर्फ अल्लाह रखा को जो बड़ा था, अपने छोटे भाई के चाल चलन के मुतल्लिक शिकायत थी। वो शराब पीता था, रिश्वत लेता था और कभी कभी किसी गरीब और नादार औरत को फंसा भी लिया करता था। मगर अल्लाह रखा ने हमेशा चश्मपोशी से काम लिया था कि घर का आमन और सुकून दरहम बरहम न हो। दोनों शादीशुदा थे। अल्लाह रखा की दो लड़कियां थी, एक ब्याही जा चुकी थी और एक अपने घर में खुश थी। दूसरी, जिसका नाम सुगरा था, 13 बरस की थी और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। अल्लाह दित्ता की एक लड़की थी जैनब, उसकी शादी हो चुकी थी मगर अपने घर में इतनी खुश नहीं थी, इसलिए कि उसका खाविंद ओबाश था। फिर भी वो जूं तूं निभाए जा रही थी। जैनब अपने भाई तुफैल से 3 साल बड़ी थी। इस हिसाब से तुफैल की उम्र 18-19 बरस के करीब होती। वो लोहे के एक छोटे से कारखाने में काम सीख रहा था। लड़का जहीन था, चुनांचे काम सीखने के दौरान भी 15 रुपये माहवार उसे मिल जाते थे। भाइयों की बीवी मेहनती और इबादत गुजर औरतें थी। उन्होंने अपने शोहरों को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। जिंदगी बड़ी हमवार गुजर रही थी कि एकाएक हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो गए। दोनों भाइयों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके मालो जान और इज्जतो आबरू पर हमला होगा, और उन्होंने अफरा तफरी और कसम पूसी के आलम में रियासत पटियाला छोड़ना पड़ेगी। मगर ऐसा हुआ। दोनों भाइयों को कतई मालूम नहीं कि इस खूनी तूफान में कौन सा दरख्त गिरा, कौन से दरख्त से कौन सी टहनी टूटी। जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो चंद हकीकतें सामने आई और वो लरज गए। अल्लाह रखा की लड़की का शौहर शहीद कर दिया गया और उसकी बीवी को बुलवाइयों ने बड़ी बेदर्दी से हलाक कर दिया था। अल्लाह दित्ता की बीवी को भी सिखों ने कृपाणों से काट डाला था। उसकी लड़की जैनब बदचलन शोहर भी मौत के घाट उतार दिया गया था। रोना धोना बेकार था। सब्र शुक्र के बैठ रहे, पहले तो कैंपों में गलते सड़ते रहे, फिर गली कूचों में भीख मांगा किए। आखिर खुदा ने सुनी। अल्लाह दित्ता को गुजरावाला में एक छोटा सा शिकस्ता मकान सर छुपाने को मिल गया। अल्लाह रखा लाहौर में ही देर तक दर बदर फिरता रहा। जवान लड़की साथ थी, गोया एक पहाड़ का पहाड़ उसके सर पर था। ये अल्लाह ही जानता है कि उस गरीब ने किस तरह 1.5 बरस गुजारा। बीवी और बड़ी लड़की का गम वो बिल्कुल भूल चुका था। करीब था कि वो कोई खतरनाक कदम उठाए कि उसे रियासत पटियाला के एक बड़े अफसर मिल गए जो उसके बड़े मेहरबान थे। उसने उनको अपनी हालत जार आलिफ से लेकर ये तक कह सुनाई। आदमी रहम दिल था। उसको बड़ी दिक्कतों के बाद लाहौर के एक आरिजी दफ्तर में एक अच्छी मुलाजमत मिल गई थी। चुनांचे उन्होंने दूसरे रोज ही उसको 40 रुपया माहवार पर मुलाजिम रख लिया और एक छोटा सा क्वार्टर भी रिहायश के लिए दिलवा दिया। अल्लाह रखा ने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने उसकी मुश्किलात दूर की। अब वो आराम से सांस ले सकता था और इत्मीनान से सोच सकता था। सुगरा बड़े सलीके वाली सुधड़ लड़की थी। सारा दिन घर के काम काज में महरूफ रहती, इधर उधर से लकड़ियां चुन के लाती, चूल्हा सुलगाती और मिट्टी की हांडियों में हर रोज इतना सालन पकाती जो 2 वक्त के लिए पूरा हो जाए। आटा गूंदती, पास ही तंदूर था, वहां जाकर रोटियां लगवा लेती। तन्हाई में आदमी क्या क्या नहीं सोचता। तरह तरह के ख्याल आते हैं। सुग्रा आमतौर पर दिन में तन्हा होती थी और अपनी बहन और माँ को याद करके आंसू बहाती रहती थी, पर जब बाप आता था तो वो अपनी आंखों से सारे आंसू खुश्क कर लेती थी ताकि उसके जख्म हरे ना हो। लेकिन वो इतना जानती थी कि उसका बाप अंदर ही अंदर घुला जा रहा है, उसका दिल हर वक्त रोता रहता, मगर वो किसी से ना कहता। सुग्रा से भी उसने कभी उसकी माँ और बहन का जिक्र नहीं किया था। जिंदगी उफ्ता उखीजा गुजर रही थी। उधर गुजरावाला में अल्लादित्ता अपने भाई के मुकाबले किसी कदर खुशहाल था, क्योंकि उसे भी मुलाजमत मिल गई थी और जैनब भी थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लेती थी। मिल मिला के कोई 100 रुपए मुहावार हो जाते थे, जो तीनों के लिए बहुत काफी थे। मकान छोटा था मगर ठीक था। ऊपर की मंजिल में तुफैल रहता था, निचली मंजिल में जैनब और उसका बाप। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। अल्लादित्ता उससे ज्यादा काम नहीं करने देता था। नांचे मुंह अंधेर उठकर वो सहन में झाड़ू देकर चूल्हा सुलगा देता था कि जैनब का काम कुछ हल्का हो जाए। वक्त मिलता तो 2-3 घड़े भरकर घड़ोची पर रख देता था। जैनब ने अपने शहीद खामिद को कभी याद नहीं किया था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उसकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। वो खुश थी, बाप के साथ बहुत खुश थी। बाज़ औकात वो उससे लिपट जाती तो फैल के सामने भी, और उसको खूब चूमती थी। सुग्रा अपने बाप से ऐसे चहल नहीं करती थी। अगर मुमकिन होता तो वो उससे पर्दा करती, इसलिए नहीं कि वो कोई नामहरीम था, नहीं, सिर्फ एहतराम के लिए। उसके दिल से कई दफ़ा ये दुआ उठती थी, या परवरदिगार मेरा बाप मेरा जनाजा उठाए। बाज़ औकात कई दुआएं उल्टी साबित होती हैं। जो खुदा को मंजूर था वही होना था। गरीब सुग्रा के सर पर गम अंधों का एक और पहाड़ टूटना था। जून के महीने में दोपहर को दफ्तर में किसी काम से जाते हुए तपती हुई सड़क पर अल्लाह रखा को ऐसी लू लगी कि बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने उठाया, अस्पताल पहुंचाया, मगर दवा दारू ने कोई काम ना किया। सुग्रा बाप की मौत के सदमे से नीम पागल हो गई। उसने करीब करीब आधे भाल नोच डाले। हम साइयों ने बहुत दम दिलासा दिया, मगर ये कारगर कैसे होता। वो तो ऐसी कश्ती के मानिंद थी जो उसका बादबान हो, ना कोई पतवार और बीच मझधार के आन फंसी हो। पटियाला के वो अफसर जिन्होंने मरहूम अल्लाह रखा को मुलाजमत दिलाई थी, फरिश्ताए रहमत साबित हुए। उनको जब इत्तिला मिली तो दौड़ आए। सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि सुग्रा को मोटर में बिठाकर घर छोड़ाए और बीवी से कहा कि वो इसका ख्याल रखें। फिर अस्पताल में जाकर उन्होंने अल्लाह रखा के गुसल वगैरह का वहीं इंतजाम किया और दफ्तर वालों से कहा कि वो उसको दफना आए। अल्लादित्ता को अपने भाई के इंतकाल की खबर बड़ी देर बाद मिली। बहरहाल वो लाहौर आया और पूछता पूछता वहां पहुंच गया जहां सुग्रा थी। उसने अपनी भतीजी को बहुत दम दिलासा दिया, बहलाया, सीने के साथ लगाया, प्यार किया, दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया, बहादुर बनने को कहा। मगर सुकरा के फटे हुए दिल पर इन तमाम बातों का क्या असर होता। गरीब खामोश अपने आंसू दुपट्टे में खुश्क करती रही। अल्लादित्ता ने अफसर साहब से आखिर में कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी गर्दन आपके एहसानों तले हमेशा दबी रहेगी। मरहूम की तजहीज और तकफीन का आपने बंदोबस्त किया। फिर ये बच्ची बिल्कुल बेसहारा रह गई थी, इसको आपने अपने घर में जगह दी। खुदा आपको इसका अज्र दे। अब मैं उसे अपने साथ लिए जाता हूँ, मेरे भाई की बड़ी कीमती निशानी है। अफसर साहब ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अभी इसे कुछ देर और यहाँ रहने दो, तबीयत संभल जाए तो ले जाना। अल्लादित्ता ने कहा, हुजूर, मैंने इरादा किया है कि इसकी शादी अपने लड़के से करूँगा और बहुत जल्द। अफसर साहब बहुत खुश हुए, बड़ा नेक इरादा है, लेकिन इस सूरत में जबकि तुम उसकी शादी अपने लड़के से करने वाले हो, इसका घर में रहना मुनासिब नहीं। तुम शादी का बंदोबस्त करो, तारीख से मतला कर देना, खुदा के फजलो करम से सब ठीक हो जाएगा। बात दुरुस्त थी, अल्लादित्ता वापस गुजरावाला चला गया। जैनब उसकी गैर मौजूदगी में बड़ी उदास हो गई। जब वो घर में दाखिल हुई तो उससे लिपट गई और कहने लगी कि उसने इतनी देर क्यों लगाई। अल्लादित्ता ने प्यार से उसे एक तरफ हटाया। अरे बाबा, आना जाना किया है, पर फतीहा पढ़नी थी, सुग्रा से मिलना था, उसे यहाँ लाना था। जैनब ना मालूम क्या सोचने लगी थी, सुग्रा को यहाँ लाना था। एकदम चौंक कर, हाँ, सुगरा को यहां लाना था, पर वो कहां है? वही है, पटियाला के एक बड़े नेक दिल अफसर हैं, उनके पास है। उन्होंने कहा, जब तुम इसकी शादी का बंदोबस्त कर लोगे तो ले जाना। ये कहते हुए इसने बीड़ी सुलगाई। जैनब ने बड़ी दिलचस्पी लेते हुए पूछा, उसकी शादी का बंदोबस्त कर रहे हो? कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? अल्लादित्ता ने जोर का कश लगाया, अरे भाई अपना तुफैल, मेरे बड़े भाई की सिर्फ एक ही निशानी तो है, उसे क्या गोरों के हवाले कर दूंगा? जैनब ने ठंडी सांस भरी, तो सुगरा की शादी तुम तुफैल से करोगे? अल्लादित्ता ने जवाब दिया, हाँ। क्या तुम्हें कोई एतराज है? जैनब ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, हाँ, और तुम जानते हो क्यों है? ये शादी हरगिज नहीं होगी। अल्लादित्ता मुस्कुराया, जैनब की थोड़ी पकड़कर उसने मुंह चूमा, पगली हर बात पर शक करती है, और बातों को छोड़ आखिर मैं तेरा बाप हूं। जैनब ने बड़े जोर से हूं की, बाप, और अंदर कमरे में जाकर रोने लगी। अल्लादित्ता उसके पीछे गया और उसको पुचकारने लगा। दिन गुजरते गए। तुफैल फरमाबदार लड़का था। जब उसके बाप ने सुगरा की बात की तो वो फौरन मान गया। आखिर 3-4 महीने के बाद तारीख मुकर्रर हो गई। अफसर साहब ने फौरन सुगरा के लिए एक बहुत अच्छा जोड़ा सिलवाया जो उसे शादी के दिन पहनना था। एक अंगूठी भी ले दी। सुगरा को करीब करीब सभी जानते थे और उसके हालात से भी वाकिफ थे। चुनांचे उन्होंने मिल मिलाकर उसके लिए बड़ा अच्छा जहेज तैयार किया। दुल्हन बनी तो ऐसा महसूस हुआ कि तमाम दुख जमा हो गए हैं और उसको पीस रहे हैं। बहरहाल वो अपने ससुराल पहुंची, जहां उसका इस्तकबाल जैनब ने किया कि कुछ इस तरह की। सुगरा को उसी वक्त मालूम हो गया कि वो उसके साथ बहनों का सलूक नहीं करेगी, बल्कि सास की तरह पेश आएगी। सुगरा का अंदेशा दुरुस्त था। उसके हाथों की मेहंदी अभी अच्छी तरह से भी नहीं उतर पाई थी कि जैनब ने उससे नौकरों के काम लेना शुरू कर दिया। झाड़ू वो देती, बर्तन वो मांझती, चूल्हा वो झोंकती, पानी वो भरती, ये सब काम वो बड़ी फुर्ती और बड़े सलीके से करती, लेकिन फिर भी जैनब खुश ना होती। बात बात पर उसको डांटती, टपकती और झिटकती रहती। सुगरा ने दिल में तय कर लिया था, वो ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी और कभी हर्फ़े शिकायत जबान पर ना लाएगी, क्योंकि अगर उसे यहाँ से धक्का मिल गया तो उसके लिए और कोई ठिकाना नहीं था। अल्लादित्ता का सलूक अलबत्ता इससे बुरा नहीं था। जैनब की नज़र बचाकर वो कभी कभार उसे प्यार कर लेता था और कहता था कि वो कुछ फिक्र ना करे। जैनब जब कभी अपनी किसी सहेली के यहाँ जाती तो अल्लादित्ता इत्तेफाक से घर पर होता, तो वो उससे दिल खोलकर प्यार करता, उससे बड़ी मीठी मीठी बातें करता, काम में उसका हाथ बटाता, जो चीज़ें छुपा कर रखी होती उसे देता, सीने के साथ लगाकर उससे कहता, सुगरा तुम बड़ी प्यारी हो। सुगरा झेप जाती। दरअसल वो इतने पुरजोर प्यार की आदि नहीं थी। उसका मरहूम बाप अगर कभी उसे प्यार करना चाहता था तो सिर्फ उसके सर पर हाथ फेर दिया करता था या इसके कंधे पर हाथ रखकर ये दुआ दिया करता था, खुदा मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। सुगरा तुफैल से बहुत खुश थी। बड़ा अच्छा खाविंद था, जो कमाता था उसके हवाले कर देता था, मगर सुगरा जैनब को दे देती थी, इसलिए कि वो उसके कहरो गजब से डरती थी। तुफैल से सुगरा ने जैनब की बदसलूकी और उसके सास जैसे बर्तावों का कभी जिक्र नहीं किया था। वो सुलह कुल थी। वो चाहती थी कि इसके बाइस घर में किसी किस्म की बदमजाजी ना पैदा हो। कई बातें थी जो वो तुफैल से कहना चाहती थी तो कह देती, मगर उसे डर था कि तूफान बरपा हो जाएगा और तो इसमें बचकर निकल जाएंगे, मगर वो अकेली इसमें फंस जाएगी और उसकी ताब ना ले सकेगी। ये खास बातें उसे चंद रोज हुए मालूम थी और वो काँप काँप गई थी। अब अल्लादित्ता उसे प्यार करना चाहता था तो वो अलग हट जाती, दौड़कर ऊपर चली जाती थी जहाँ वो और तुफैल रहते थे। तुफैल को जुम्मा की छुट्टी होती थी, अल्लादित्ता को इतवार को। जैनब कहीं बाहर गई होती तो सुगरा की जान पर बनी रहती, डर के मारे उससे काम ना होता, लेकिन जैनब का ख्याल आता तो उसे मजबूरन काँपते हाथों से, धड़कते दिल से तोहन व करहन सब कुछ करना पड़ता। अगर वो खाना वक्त पर ना पकाए तो उसका खाविंद भूखा रहे, क्यों कि वो ठीक 12 बजे अपने इर्द रोटी के लिए भेज देता था। एक दिन इतवार को जब कि जैनब घर पर नहीं थी और वो आटा गूंद रही थी, अल्लादित्ता पीछे से दबे पांव आया, खलंडरे अंदाज में उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। वो तड़प कर उठी, मगर अल्लादित्ता ने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। सुगरा ने चीखना शुरू कर दिया, मगर वहां सुनने वाला कौन था? अल्लादित्ता ने कहा, शोर मत मचाओ, ये सब बेफायदा है, चलो आओ। वो चाहता था कि सुगरा को उठाकर अंदर ले जाए। कमजोर थी मगर खुदा जाने उसमें कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि अल्लाह दित्ता की गिरफ्त से निकल गई और हांफती कांपती ऊपर पहुंच गई। कमरे में दाखिल होकर उसने अंदर से कुंडी चढ़ा दी। थोड़ी देर बाद जैनब आ गई। अल्लाह दित्ता की तबीयत खराब हो गई थी। अंदर कमरे में लेट कर उसने जैनब को पुकारा। वो आई तो उससे कहा, इधर आओ, मेरी टांगे दबाओ। जैनब उचक कर पलंग पर बैठ गई और अपने बाप की टांगे दबाने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों के सांस तेज तेज चलने लगे। जैनब ने अल्लाह दित्ता से पूछा, क्या बात है, आज तुम अपने आप नहीं हो? अल्लाह दित्ता ने सोचा कि जैनब से छुपाना फजूल है, चुनाचे उसने सारा माजरा बयां कर दिया। जैनब आग बबूला हो गई। क्या एक काफी नहीं थी? तुम्हें तो शर्म ना आई, पर अब तो आनी चाहिए थी। मुझे मालूम था कि ऐसा होगा, इसलिए मैं शादी के खिलाफ थी। सुन लो कि सुगरा इस घर में नहीं रहेगी। अल्लाह दित्ता ने बड़े मिस्कीन लहजे में पूछा, क्यों? जैनब ने खुले तौर पर कहा, मैं इस घर में अपनी सौतन देखना नहीं चाहती। अल्लाह दित्ता का हलक खुश्क हो गया। इसके मुंह से कोई बात ना निकल सकी। जैनब बाहर निकली तो उसने देखा कि सुगरा सहन में झाड़ू दे रही है। चाहती थी कि इससे कुछ कहे मगर खामोश रही। इस वाके को 2 महीने गुजर गए। सुगरा ने महसूस किया कि तोफैल उससे खिंचा खिंचा रहता है, जरा जरा सी बात को शक की निगाहों से देखता है। आखिर एक दिन आया कि उसने तलाकनामा उसके हाथ में दिया और घर से बाहर निकाल दिया।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।